जय माँ। तो आज हम लोग योग समन्वय में तीसरा भाग जो योग ऑफ इंटीग्रल नॉलेज, सम्यक ज्ञान या समग्र ज्ञान जैसे भी हम कहें, उसका दूसरा चैप्टर है द स्टेटस ऑफ नॉलेज। उस वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर था ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज यानी योग का ध्येय। अब किस सेंस में ज्ञान का ध्येय क्या है? तो आमतौर पर जब हम लोग बात करते हैं ज्ञान के बारे में तो एक शब्द उपयोग में आता है, सेल्फ रियलाइजेशन। एक बहुत ही नेबुलस सा वर्ड है फ्रैंकली, क्योंकि अब सेल्फ रियलाइजेशन में बहुत लोग, अन्य लोग अपनी अपनी चीज़ें डाल देते हैं। कुछ समय पूर्व किसी ने एक पत्र लिखा फॉर एग्जाम्पल कि केवल सेल्फ रियलाइज व्यक्ति ये बता सकता है। तो मैंने कहा कैसे, तुम्हारे क्राइटेरिया क्या होंगे कि कोई सेल्फ रियलाइज है कि नहीं है? तो ये इस पर डिपेंड, और ये हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो डिफाइन नहीं की जा सकती, क्योंकि जब योग में सेल्फ की बात होती है तो वी डोंट यूज़ द वर्ल्ड, कोई उसकी डेफिनेशन नहीं है। ये अचिंत है, ये बुद्धि की ग्रास्प के परे है। तो सेल्फ रियलाइजेशन भी वर्ड यूज होता है, दूसरा होता है डिवाइन रियलाइजेशन। दोनों में अंतर क्या है? एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं। सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ ये होता है कि सेल्फ यानी आत्म। तो हम नॉर्मली एक सीमित सीमित आत्म के, सेल्फ के सेंस में रहते हैं, जो हमारा ईगो सेल्फ है, जो बाहर की बहुत सारे घात संघात से बना है, हेरिडिटी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पास से हम जो लेके आए हैं, फ्लक्स में है, चेंजिंग पर्सनालिटी है, उससे हम आइडेंटिफाई होकर कहते हैं सेल्फ। और जब सेल्फ विद ए कैपिटल एस कहा जाता है, इसका अर्थ ही होता है कि हमारा ही अपना वो एक सच्चा स्व है। तो उस सेंस में सेल्फ रियलाइजेशन कि हम ही हैं वो, लेकिन हम नहीं जानते, तो अज्ञान से ढके हुए, अज्ञान के परे ट्रू सेल्फ। तो कई बार उसको क्वालिफाई करते हैं ट्रू सेल्फ। डिवाइन सेल्फ शब्द की अपनी एक अनूठी बात है, क्योंकि सेल्फ विदाउट एनी फर्दर क्वालिफिकेशन या केवल ट्रू सेल्फ, वो एक इम्पर्सनल स्टेट है। जो उपनिषदों से ये बात बहुत प्रचलित हुई है, जहाँ पे दो पुरुषों की बात होती है, एक जो म्यूटेबल चलायमान गतिशील प्रकृति के अंदर जो भगवान समाहित हैं, और दूसरा वो सेल्फ जो इससे परे है। तो वो इम्पर्सनल है, लेकिन उस इम्पर्सनल के साथ आप संबंध नहीं जोड़ सकते हैं। तो वहीं से वाद विवाद शुरू होता है पर्सनल और इम्पर्सनल का, कि कौन सा ग्रेटर है। लेकिन जब डिवाइन सेल्फ कहा जाता है, जो गीता में जो तीसरे पुरुष की बात होती है, थर्ड सेल्फ की बात होती है, जो डिवाइन सेल्फ जिसके अंदर ये दोनों हैं, तो उसका उससे अर्थ ये निकलता है कि वो हाइएस्ट तो है, लेकिन वो हमसे संबंध जोड़ भी सकता है या अपने आप में वो मग्न भी है। दोनों संभावनाएं जुड़ जाती हैं। तो एक नया डोर ओपन होता है इसमें, इस दिशा में जाने के लिए, भगवान से संबंध जोड़ के जाने का। नहीं तो जो टिपिकल ज्ञान योगिन है, वो किसी भी प्रकार का संबंध जोड़ने में भगवान के साथ, उसको भ्रांति समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है, अद्वैत वाले भी स्वीकार करते हैं, बट ये कंसेशन के रूप में कि मानव प्रकृति चूंकि सीमाओं में रहती है, मानव चेतना बद्ध है अज्ञान से, इसलिए हम अनेकों संबंध जोड़ सकते हैं, किंतु अल्टीमेटली जो भगवान हैं वो अचिंत हैं, वो निर्गुण हैं, निराकार हैं, उनसे आप किसी प्रकार का संबंध नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इन दोनों में अंतर है। लेकिन इसके बाद भी एक और समस्या आती है। समस्या ये आती है कि जब हम सेल्फ रियलाइज करते हैं या डिवाइन सेल्फ को रियलाइज करते हैं, तो इस संसार का फिर क्या होता है? संसार का कोई औचित्य रहता है या नहीं? तो उसके बारे में भी अलग अलग धारणा है। एक धारणा यह है कि इसका औचित्य समाप्त हो जाता है। इसका प्रयोजन यही था कि आपको सुख दुख के अनुभवों से ले जाकर उस पॉइंट पर ले आना जहां हम स्वयं ही खोजें, या एक कृपा हमारे साथ हो कि वो ट्रू सेल्फ क्या है। तो जब हम उसको खोज लेते हैं, तो ये जैसे एक पॉट के अंदर वृक्ष ग्रो करता है, तो पॉट की जरूरत होती है प्रारंभ में वृक्ष के ग्रो करने के लिए, लेकिन बाद में इसका औचित्य समाप्त हो जाता है। ये भी एक थोड़ी ना मानव इंट्यूशन को, ना हमारी कॉमन सेंस को, ना लॉजिक को ये चीज़ पूरी तरह किसी को भी संतुष्ट कर सकती है, क्योंकि फिर ये प्रश्न उठता है ये सारा जगत प्रपंच आया ही क्यों? तो इसका एक समुचित उत्तर नहीं है। ट्रेडिशनल शास्त्रों में, लेट्स एक्सेप्ट दिस। अब उत्तर इस तरह के हैं कि ये माया है, कि इल्यूजन है, लेकिन ये इल्यूजन क्यों आया, किसने बनाया और कौन इल्यूजन में बंधा हुआ है, तो अष्टावक्र गीता तो यहाँ तक कह देती है नन इज बाउंड, नन इज फ्री, नन सीकिंग टू बी फ्री। तो उसके तो ये एक दिमाग के अंदर एक बहुत ही पेचीदा रास्ते में व्यक्ति चला जाता है। और चूंकि हम लोग थॉट के एफर्ट को अवॉइड करते हैं, हम लोग विचारों से के साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं, और कई लोग जो ज्ञान योग की दिशा में जाते हैं वो यहाँ तक कह देते हैं कि हो गया इस, आप सोच के ये चीज़ नहीं जान सकते, और उसका अपना एक औचित्य भी है, तो उस पूरी एक्सरसाइज को ड्रॉप कर देते हैं। तो जब हम जान जाएंगे तो फिर कोई प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ प्रश्न उठ रहा था जिस भूमि पर वो समाप्त हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आप, ये कुछ इस तरह की बात है कि आप अपने गांव में रहते हैं, गांव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप परेशान हो रहे हो कि नाला क्यों साफ नहीं होता है और म्यूनिसपैलिटी काम क्यों नहीं करती है। अब आप एक दूसरे शहर में चले गए जहाँ पे समझिए एक ड्रीम सिटी है, तो अब ड्रीम सिटी में आपकी ये प्रॉब्लम समाप्त हो गई, क्यों, क्योंकि अब आप वहाँ पे नहीं रह रहे हो। लेकिन जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम समाप्त नहीं हुई, तो आपके लिए समाप्त हो गई। तो देखा जाए एक दृष्टि से तो व्यक्तिगत मोक्ष एक स्वार्थ का एक इल्यूजन, एक लास्ट इल्यूजन, श्री अरविंद माता जी कहते हैं कि जिसको ओवरकम करना होता है, और वो इल्यूजन क्या है कि बस व्यक्ति की मुक्ति। तो जब तक व्यक्ति अपनी स्वयं की मुक्ति खोज रहा है तब तक इंटेग्रल नॉलेज या वो डिवाइन सेल्फ जिसने इस सृष्टि को और स्वयं को दोनों का ही ज्ञाता है, ये नहीं मिलता। ये नहीं कि अलाउड नहीं है, सीख कर सकता है व्यक्ति, अपने अपने ढंग से खोजता है। तो शेरविन जब इंटीग्रल नॉलेज की बात करते हैं तो उनका जो सेल्फ की भी बात करते हैं उसमें ये दोनों एस्पेक्ट हैं। एक है पैसिव, जहाँ जैसे कि ट्रेडिशन में कहा गया है कि वो सेल्फ दृष्टा है, सब चीज़ के परे है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषे बाह्य दोषा, वो संसार में जो कुछ हो रहा है उससे वो निर्लिप्त है और उससे परे है। तो ये तो है, लेकिन उसी के अंदर से ये सारी सृष्टि निकली है, ऑब्जेक्टिवाइज हुई है। तो उसके अंदर एक डायनेमिक साइड भी है जिसको शक्ति, डिवाइन मदर कहा जाए। तो अल्टीमेटली उस सेल्फ के अंदर पुरुष और प्रकृति, ईश्वर और शक्ति, उन दोनों का भेद समाप्त हो जाता है। वो शक्ति उन्हीं की शक्ति है, माया किसकी है, भगवान की ही माया है, और उसी माया ने इस संसार को प्रकट किया है। तो ये एक पार्ट है जो रिकनसाइल करते हैं श्री अरविंद, श्री कृष्ण गीता में भी करते हैं, दोनों अपने अपने ढंग से मोर और लेस यहाँ तक पैरेलल है कि ये संसार एक छलना नहीं है, वो भगवान क्यों, जो माया है वो उन्हीं की माया है। तो जरूर कोई प्रयोजन होगा, और वो स्पष्ट रूप से गीता में ये प्रयोजन बताया नहीं जाता है, हिंट किया जाता है, कई जगहों पे हिंट किया जाता है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि हाईएस्ट योगी कौन है और लोक संग्रहार्थ, ये दो तीन बातें वो करते हैं जहाँ पर वो स्पष्ट होता है कि इसके अंदर कोई बात है जो वो रोक रहे हैं, जो शायद दोबारा आके कहना चाहेंगे। तो इस यहाँ पर श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं कि इस संसार का भी एक प्रयोजन है। अब वो प्रयोजन केवल मुक्ति नहीं है। तो अब यहाँ पर श्री अरविंद का वो जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसका एक अलग एस्पेक्ट है, यानी जो हम ये सेल्फ है और जो हाईएस्ट सेल्फ है इसके बीच में ग्रेडेशन है, और जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं, अलग अलग सेल्फ में समाधिष्ट होते जाते हैं, आइडेंटिफाइड होते हैं, वैसे वैसे माता जी जिसको कहती हैं रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस, संसार को हम भिन्न रूप से समझते हैं। तो अब कैसे समझते हैं, इसका एक उदाहरण ले लें कि जब लोग मान लीजिए एक प्रकार से एलोपैथी का एग्जाम्पल लेता हूँ, कि बहुत पहले जब एलोपैथी के नाम पर जो लीचेज, लीच क्या, जोंक होती है, जोंक से खून चुसवाते थे और उसको कहते थे ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को दिया गया था क्योंकि उसको फेरेंजाइटिस हो गई थी। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट को जोंक डाल दिया गया, वो खून चूसती थी जोंक, इनको लगता था कि वो पॉइजनस ब्लड चला जाएगा। अब वो ब्लड पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों चला गया, और वो चल इस, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इलॉजिकल था, लेकिन ये नहीं किया आप इसको। तो वो जब और कमज़ोर होते गए तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत बीमार हो रहे हैं, इनको और जोंक डाल दो। तो उन्होंने जोंक के अमाउंट बढ़ा दिए और फिर वो मर गए, ये नॉन स्टोरी है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे एलोपैथी का विस्तार हुआ तो आपने उसी चीज़ को एक नए ढंग से समझना शुरू किया। अब खून में टॉक्सिन्स है, ये बात सही थी, क्योंकि वो रक्त विषैला होने का अर्थ क्या है, मान लीजिए उसके अंदर बैक्टीरिया में हो गया, खूब सारे बैक्टीरिया चले गए, वायरस चले गए, तो अब अशुद्ध हो गया, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ, तो आपने उसी चीज को एक नए ढंग से देखना और नए ढंग से उसको समझना, नए ढंग से उस पर कार्य करना प्रारंभ किया। तो ये जो ग्रेटर सेल्फ है, ये ना केवल संसार के ऊपर है, बल्कि वो ना केवल संसार को एक नए ढंग से समझता है, किंतु वो हस्तक्षेप करता है। यानी जो इंटीग्रल नॉलेज है उसमें संसार का ज्ञान उसके अंदर सन्निहित है, और ना केवल सन्निहित है, उससे हम संसार की अवस्था को सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा शक्ति है। तो ये लॉजिक है जिसके अनुसार श्री अरविंद इंटीग्रल नॉलेज की तरफ हम लोगों को ले आते हैं। तो ये हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, बड़े सुंदर कुछ वाक्य थे जिसमें श्री अरविंद ये कहते हैं कि ही इज़ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एंड बियॉन्ड पर्सनल एंड इम्पर्सनल। कई बार इस पर भी लोगों की बात हुई, तो एब्सोल्यूट है वो, पर्सनैलिटी भी एज्यूम करता है और वो पर्सनैलिटी के परे भी है, और दोनों के परे है वो, और फिर भी हर चीज़ में व्याप्त हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी सुंदर बातें हैं जो हम लोगों ने पढ़ी थी, और इसका लास्ट भाग हम लोग पढ़ेंगे पेज 299 पर, कि लक्षण क्या होता है कि जिसने इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त किया है। गीता एक चीज़ बड़ी स्पष्ट करती कि ब्रह्मभूत अवस्था में आप सारे कार्य कर सकते हो, तो उस सेंस में वो शंकराचार्य जी से डिफर करती है, क्योंकि उनके अनुसार कर्मों का औचित्य समाप्त हो जाता है, और जो व्यक्ति एक बार ईश्वर को प्राप्त कर ले, ही नीड नॉट कम एंड डू एक्शंस। फिर भी कुछ एक्शन जो या तो आपके पुरानी प्रकृति के इम्पल्शन से चल रहे हैं या कुछ लौकिक कर्तव्य है, आप करते हो, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि आप ब्रह्म भूत अवस्था में, जहाँ आप उस अवस्था में पहुँच गए हो कि ब्रह्म ही भोजन कर रहा है, भोजन भी ब्रह्म है और अर्पण भी ब्रह्म को कर रहा है, और उसमें भी आप पूरे जीवन के सारे कार्यकलाप कर सकते हो। तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी भी भारतवर्ष में बहुत अधिक एक संन्यास प्रवृत्ति है, जिससे भारत को जितना नुकसान हुआ है और हो रहा है, और फिर विद एम्फेसिस आई मस्ट ऐड, संन्यासियों को पूजा करना, संन्यास को बढ़ावा देना भारतवर्ष के पतन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भारतवर्ष को केवल ब्रिटिशर्स और मुगल्स ने नहीं हार्म किया है, उससे कहीं अधिक नुकसान जो संन्यास की प्रवृत्ति है, जिसने वेल जो हीरोइक सोल्स थी, बेस्ट सोल्स थी, उनको भी संसार से परे ले गए, और अभी भी हमारी मानसिकता में है कि जिसने जितना बाहर से संसार को छोड़ दिया उतना बड़ा योगी, और इस मानसिकता को समाप्त होना होगा यदि भारत का कल्याण होना है, वरना हम वापस दो भागों में जीवन को बांटेंगे। तो श्री अरविंद यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं, पेज 299, दिस इज द इंटीग्रल नॉलेज, फॉर वी नो दैट एवरीवेयर एंड इन ऑल कंडीशंस, ऑल टू द आई दैट सीज इज वन, टू अ डिवाइन एक्सपीरियंस ऑल इज वन ब्लॉक ऑफ द डिवाइन। भगवान ये भेद नहीं करते हैं, हम करते हैं। भगवान ये नहीं कहते अरे ये तुच्छ संसार है, वो कह भी नहीं सकते वही बने हैं वो उसको डिसोन नहीं कर सकते हैं। द लिबरेटेड नोअर लिव्स एंड एक्ट्स इन द वर्ल्ड नॉट लेस देन द बाउंड सोल एंड इग्नोरेंट माइंड बट मोर। जो मुक्त है, जो ज्ञानी है, वो संसार में और अधिक कर्म करता है, कम नहीं करता है। ये आइडिया कि वो तो दूर हो जाएगा, अलग हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा, विरक्ति क्या है उसकी बात बाद में, उसका भी पूरा सब कुछ विस्तार से श्री अरविंद बताएंगे। लेकिन ये जो हमारी धारणा है कि जो संसार में कर्म कर रहा है, और यदि कोई ज्ञानी है भी, वो कर्म एक केवल एक साधन है ज्ञान का, और दूसरी जो भावना है कि जो हमारी धारणा है कि यदि कोई ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो संसार से विरक्त होके बाबा जी बन के बैठ जाता है, उसका ना कोई साथी है, ना संगी है, ना बंधु है, ना माता है, ना पिता है। तो श्री अरविंद यहाँ पे कह रहे हैं कि ना केवल वो संसार में कर्म करता है बल्कि और अधिक करता है, और इसके स्टैंडर्ड लिविंग एग्जाम्पल हैं श्री अरविंद और माँ दोनों। दोनों के जीवन को अगर हम देखें, और ये वो स्थान नहीं है कि जो कुछ श्री अरविंद ने किया और माता जी ने किया, इवन मटेरियल वर्ल्ड में, तो वो अपने आप में गाथा है, लेकिन वो कभी और। यहाँ पर हम लोग सिंथेसिस में, डूइंग ऑल एक्शंस, ये नहीं कि कुछ करेगा कुछ नहीं करेगा, सर्वकृत, फिर कैसे करेगा, अंतर क्या होगा, ओनली विद ए ट्रू नॉलेज एंड ए ग्रेटर कॉन्शियंट पावर, वो सारे कर्म जो बाकी सब करते हैं वो करेगा, लेकिन वो सच्चे ज्ञान के साथ करेगा और एक नई शक्ति नई ऊर्जा के साथ करेगा, यानी अधिक करेगा, लेकिन वो अधिक केवल नंबर ऑफ आवर्स में नहीं है, वो अधिक क्वालिटी में है, क्योंकि वो क्वालिटेटिव बहुत डिफरेंस है। मुझे एक फिल्म की कहानी है, मतलब एक डायलॉग है, मुझे भूल गया हूँ कौन सी पिक्चर है, कौन सी क्या थी क्या थी, पर वो डायलॉग बहुत सुंदर था। तो एक व्यक्ति है, वो कुछ मैकेनिकल कुछ काम था, नहीं हो रहा था किसी से, तो व्यक्ति आता है वहाँ पे, मैं बाकी सब भूल गया हूँ कंटेक्स्ट, लेकिन मुझे याद है कि वो कहता है मैं इसको करता हूँ। वो एक इंजीनियर है, तो वहाँ जहाँ के वो एक हथौड़ा मारता है और वो कुछ करता है, ठीक हो जाता है, तो उसमें कुछ सेकंड लगते हैं। तो जो ओनर है बड़ा इंप्रेस होता है, बोलता है कितने हुए, कहता है 1,000 रुपये। कहता है 1 सेकंड काम तो तुमने 1 सेकंड का किया, इसके लिए 1,000 रुपये? कहते हाँ, काम तो 1 रुपये का है, 999 रुपये ये जानने के लिए कि क्या करना था और कैसे करना था। हम लोग जो मेजर करते हैं काम को, वैसे मेजर करते हैं कितने आप, कितने मिनट, कितने कैसे आपने, लेकिन एक दूसरा क्राइटेरिया है, दूसरा तरीका है जो भगवान यूज करते हैं। एंड बाय सो डूइंग ही डज नॉट फॉरफीट द सुप्रीम यूनिटी नॉर फॉल फ्रॉम द सुप्रीम कॉन्शियसनेस एंड द हाइएस्ट नॉलेज। ये सोचना कि कोई संसार में कर्म कर रहा है तो अरे वो तो नीचे गिर गया, वो बहुत लोगों के अंदर ये धारणा होती, यहाँ भी होती थी, लोग माता जी को पूछते थे अरे वो तो चला गया, वो तो अब बस बाहर जाता है, ये माँ ने इसको जगह जगह करेक्ट किया है। लेकिन ये छाप इतनी अधिक है इंडियन मानसिकता में, ये 1-2 साल की नहीं है, 1,000 वर्षों की छाप है, पोस्ट बुद्धिस्ट 3,000 वर्षों से ऊपर, जिसको शंकराचार्य जी ने कॉन्ट्राडिक्ट करते करते रीइन्फोर्स कर दिया अपने ढंग से। और वो छाप इतनी स्ट्रांग है कि अभी भी हम योग को इस दृष्टि से देखते हैं। फॉर द सुप्रीम हाउ एवर हिडन नाउ टू अस इज हियर इन द वर्ल्ड नो लेस देन ही कुड बी इन द मोस्ट अटर एंड इनएफेबल सेल्फ एक्सटिंक्शन द मोस्ट इनटॉलरेंट निर्वाणा। ये श्री अरविंद की वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, और देखिए उनका प्ले ऑफ वर्ड्स, इनटॉलरेंट निर्वाण, निर्वाण भला इनटॉलरेंट कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि निर्वाण की अवस्था का संसार से कोई लेना देना नहीं है, तो हम यही तो कह रहे हैं कि इनटॉलरेंट, वो संसार को टॉलरेट नहीं कर सकता, ये श्री अरविंद का अंदाज है। और अब हम आते हैं स्टेट द स्टेटस ऑफ नॉलेज, नॉलेज की फिर स्थिति क्या है, किस स्थिति को हम कह सकते हैं कि ये ज्ञान की स्थिति है। यहाँ तो उन्होंने ऑब्जेक्ट ध्येय क्या है कौन सा, अब स्थिति क्या है, मिलता जुलता है लेकिन फिर भी अंतर है। तो पहली भ्रांति होती है कि जिसने बहुत पांडित्य है, खूब सारे वो मंत्रों को उच्चारण कर सकता है, श्लोकों को बिल्कुल बोल सकता है, जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं कि पंडित है, ये सब ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। फिर ये हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एनालिसिस कर रहा है, जो स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ा है, उससे रिलेटेड चीज़ों को भी पढ़ा है, वो ज्ञान है। तो श्री अरविंद कहते हैं वो ज्ञान नहीं है, हालांकि वो एक लेवल पर हमको तैयार करता है। और क्यों तैयार करता है, कैसे तैयार करता है, इसकी भी बात श्री अरविंद बता रहे हैं हम लोगों को। लेकिन वो ज्ञान का पर्याय नहीं, ये नहीं कि जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने एक भी स्क्रिप्चर ना पढ़ा हो, कई बार ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जब आप स्वयं ही अपने आत्मनिरीक्षण से, आत्म से सीकिंग को हाथ में लेके, टॉर्च आपकी क्या होती है, कुछ भी नहीं, तो आपके पास क्या होती है, फेथ होता है और सीकिंग होती है कि हे भगवान, एस्पिरेशन है, मुझे पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, है भी कि नहीं है, पर कुछ तो है जो मैं खोज रहा हूँ, और सीकिंग होती है, और ये फेथ होती है, श्रद्धा होती है कि अगर सीकिंग है तो उसका कहीं ना कहीं उत्तर है, और उसमें वो चेष्टा कर रहा है, उसको मालूम नहीं है क्या चेष्टा करनी है, लेकिन वो सीकिंग ही उसकी चेष्टा है। कई बार हम सोचते हैं कि ये चेष्टा वो चेष्टा, लेकिन वास्तव में चेष्टा क्या है, अग्नि, वो सीकिंग, वो है कि नहीं है ये केवल भगवान जानते हैं। तो ये चीज़ श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं। और अंत में बिल्कुल जो हम सब एक तरह से जानते हैं कि एक्चुअल नॉलेज कहाँ प्रारंभ होती है, और इसको हम एक उदाहरण से देते हैं। आपने किताब पढ़ी, किताब पढ़ी कि पांडिचेरी में ऐसा है वैसा है सारा, ये तो एक, ये एक तरह से हेल्पफुल है, नहीं तो आप कहीं के कहीं पहुंच सकते हो। अगर आप मैप में, अभी पता नहीं मुझे, पर पहली बार जब मैंने पांडिचेरी का मैप देखा था आने के लिए, कोई नहीं था बताने वाला, तो मैप के अंदर 3 पांडिचेरी दिखा रहा था, तो मैं लगा ये कौन से पांडिचेरी जाना है, क्योंकि वो माहे और वो उसको भी दिखाता था तो आपने थोड़ा पढ़ा, जानकारी हुई थोड़ी भाषा की, इट फैसिलिटेट्स, नो डाउट अबाउट इट। फिर क्या होता है, आप पांडिचेरी पहुंचे, अब आपका क्या हुआ, कॉन्टैक्ट हुआ। फिर आप गए श्री अरविंद के रूम में, जब पहले जाते थे श्री अरविंद के चित्र का को देखा, उनकी उपस्थिति से कॉन्टैक्ट हुआ, एक प्रकार का दर्शन हुआ वो, तो दर्शन हुआ, भगवान को देखा। लेकिन दर्शन काफी नहीं है, दर्शन के बाद आपको भगवान की चेतना का जागृत अनुभव हुआ, आपने दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो उनकी चेतना का स्पर्श मिला, चेतना का अनुभव हुआ, और होते होते पूरी तरह जब हम भगवान के साथ आइडेंटिफाइड हो गए, एक हो गए, इसको कहते हैं ज्ञान इंडियन सेंस में, भगवान के साथ एक हो जाना। श्री अरविंद आगे ये भी कहते हैं कि एक होना केवल ज्ञान में एक होना, ज्ञान वर्ड यूज किया है, लेकिन जो ज्ञान, मान लीजिए मैं किसी को कहते ना, हम लोग की जानते हैं, कोई मित्र कहे कि हम आलोक जी को जानते हैं, नहीं जानता है वो क्यों नहीं जानता है, वो कैसे जानता है, मेरी बाहरी पर्सनैलिटी को जानता है, अगर वो मेरी बातें सुन ले तो उससे तो जानना नहीं हुआ, वो हृदय को तो नहीं जानता है, हृदय के अंदर क्या भाव है, हृदय मेरा कैसा है, इसके अंदर मलिन विचार हैं, सुंदर विचार हैं, कैसे भाव हैं। तो एक ज्ञान होता है जो भावना के द्वार से भी आता है, क्योंकि अगर हम वो नहीं जाने, केवल भगवान एक सेल्फ है, इम्पर्सनल सेल्फ है, ब्रह्मन है, लेकिन भगवान का हृदय तो नहीं जानना हुआ। फिर भगवान की ऊर्जा कैसे कार्य करती है संसार में, तो ये ज्ञान, एक समग्र ज्ञान की जो बात हो रही है उसमें ये सब इंक्लूडेड है, गॉड इज ए बीइंग एंड नॉट जस्ट एन इम्पर्सनल स्टेट। तो यहां पर ये बात बैकग्राउंड है, अब हम लोग पढ़ सकते हैं कि, लेकिन पहले श्री अरविंद ये फिर से एक बार स्पष्ट करते हैं कि जिसको हम लोग ज्ञान कहते हैं, वैज्ञानिक रूप से जो चीज़ों को स्टडी करना, वो केवल एक साइंस ऑफ अपीयरेंसेस है, और इसके द्वारा हम लोग पूरा उस अल्टीमेट ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये पेज 301 पर, the knowledge which the senses and intellectual reasoning from the data of the senses can bring us is not true knowledge, it is a science of appearances. अब क्यों ये science of appearances है? Science of appearances क्यों है? क्योंकि ये how process हमको सारा पता चल गया, हम genes तक पहुंच गए, atoms तक पहुंच गए, quantum mechanics तक पहुंच गए, ये चीजें कैसे बनी है, how पूरा जान लिया, लेकिन what and why we don't know, वह क्या है जो यह बना है, पहले तो हमें ये नहीं मालूम, कोई तो चीज है ना जो ये एटम एटम बन गई, वो ओरिजिनल क्या है, इस पर गुत्थी अभी भी वैज्ञानिक, इसको कहते हैं दी हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, अलग अलग नाम दिए हैं लोगों ने कि वो क्या है जो ये बन गया है, ये एग्जिस्टेंस है क्या, दूसरा क्यों बना है, नहीं भी बनता कुछ भी, जो भी था ओरिजिनल रियलिटी रहती, तो ये, लेकिन हम हाउ जानते हैं, अगेन हाउ ये है कि बाहर से किसी ने क्या किया, मान लीजिए किसी ने किसी के घर चोरी की, या आपको लगा, अगर आप जज हैं तो आप सीधा उस पर नहीं, लेकिन वो कौन है जिसने चोरी की, हु, वो क्या है जिसने उसको इंपेल किया चोरी करने के लिए, क्यों की उसने ये चोरी जो आपको चोरी लग रही है, तो ये पूरा उसकी टोटैलिटी का ज्ञान, केवल प्रोसेस नहीं। तो यहां पर इट इज ए साइंस ऑफ अपीयरेंसेस, एंड इवन अपीयरेंसेस कैनॉट बी प्रॉपरली नोन अनलेस वी नो फर्स्ट द रियलिटी ऑफ विच दे आर इमेजेस। अब देखिए बात कैसे बदलती है, अब मान लीजिए कोई कहे कि भाई वो चोर था, एक चोर आया घर में घुस करके उसने, कहोगे क्या चुराया, अब आप बोलेंगे घर में घुस के उसने पैसे चुरा लिए, अब आपकी एक सोच एक दिशा में जा रही है, बोले घर में घुस के दिल चुराया, भगवान ये भी करते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, तो बात एक दूसरी चीज हो गई है। अब पैसे चुराए तो आप, अच्छा चोर है, नहीं चुरा के उसने क्या किया, सब में बांट दिए, अपने लिए एक भी पैसा नहीं रखा, अब देखिए आपकी थिंकिंग बदल गई, जो आप चोर कह रहे थे अब आपकी थिंकिंग बदल गई कि ये तो शायद एक प्रकार का कि न्याय में विश्वास करता है। अब होते थे ना जिनको रॉबर्स कहते थे, इंडिया में एक समय था जब जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो ये करते थे, तो आप एक ओर से उनको चोर कह रहे हो लेकिन दूसरी ओर ये उसका औचित्य ठहरा रहते थे कि ये जो धन आता था ये हम राष्ट्र की उसके लिए सेवा में ये लगा रहे हैं। तो ये अब ये मैं कहां से कनेक्ट कर रहा हूं, श्री कृष्ण की स्टोरी से, माखन चोर है तो, लेकिन वो चोर शब्द देखिए कितना अद्भुत बन गया है, चौरस्यम, वो जो आई थिंक पंडित जसदेव ने उस पर बहुत सुंदर गाया है, ये माखन चुरा रहे हैं, क्यों चुरा रहे हैं, वो हमको सिखा रहे हैं कि तुम केवल अपने आप पे एक्यूमुलेट करोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, हम लोगों ने किया, आपने किया होगा, मेहनत की होगी, लेकिन बांटो सबके साथ। सच ए ब्यूटिफुल लेसन ऑफ डिवाइन सोशलिज्म, नॉट द अदर सोशलिज्म। तो ये जो चीज है सत्य है, तो इसलिए कह रहे हैं कि अपियरेंसेस कैनॉट बी प्रॉपरली नोन अनलेस वी नो फर्स्ट द रियलिटी ऑफ विच दे आर इमेजेस। दिस रियलिटी इज देयर सेल्फ एंड देयर इज वन सेल्फ ऑफ ऑल। तभी हम एटम के परे वो क्या सत्य है जो स्वयं को प्रकट कर रहा है। अब लोग कहेंगे ठीक है, तो फिर हम एटम को और प्रोब करते चले जाएं, जीन्स को और समझते चले जाएं, शायद हमको वो सत्य मिल जाए। श्री अरविंद कहते हैं नहीं, क्योंकि फिर भी प्रोबिंग इंस्ट्रूमेंट ये सेंसेस और माइंड है, आप इससे नहीं जान सकते, क्यों, ये तो स्वयं उसका बाय प्रोडक्ट है, तो यू कैनॉट नो। इट इज एविडेंट दैट हाउएवर मच वी मे एनालाइज द फिजिकल एंड सेंसिबल, वी कैनॉट बाय दैट मीन्स अराइव एट द नॉलेज ऑफ द सेल्फ और ऑफ आवर सेल्फ और ऑफ दैट विच वी कॉल गॉड। एक बंदर कितना भी देखता रहे एक आदमी को जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, और देख देख के इमिटेट करना भी सीख जाए, हो सकता है वो यहां तक स्टडी कर ले कि ये करने से, ए वाला बटन दबाने से वहां स्क्रीन पर ए आता है, लेकिन वो ए को जानता नहीं है, ना वो उस मनुष्य को जानता है, लेकिन वो बाकी सब जानता है, उसने सीख लिया है। तो यहां पर ये बात आती है कि हम कितना भी प्रोब कर लें, वह उसकी चेतना मनुष्य की चेतना नहीं है, तो कभी नहीं जान सकता कि मनुष्य क्या होता है। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि जब तक हमारी चेतना सीमित है, इंद्रियों के दायरे में है और लॉजिकल तार्किक मन के दायरे में, तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते, रियलिटी को नहीं जान सकते। तो इंटेलेक्ट इज नॉट दैट मीन्स। अब आगे पेज 302 पे कहते हैं, ए मैन मे बी परफेक्ट इन इट, किसमें, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस में, एंड येट बी प्रिसाइजली वॉट ही वॉज बिफोर एक्सेप्ट इन द मियर फैक्ट ऑफ द ग्रेटर इंटेलेक्चुअल इलिमिनेशन। हो सकता है कोई व्यक्ति के अंदर पांडित्य हो, लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं है कि उससे उसकी प्रकृति बदली हुई है। द चेंज ऑफ हर बींग एट विच योगा एम्स मे नॉट एट ऑल टेक प्लेस। यही बात है जब श्री रामकृष्ण परमहंस के पास ईश्वरचंद विद्यासागर जाते हैं और प्रणाम करते हैं, तो श्री रामकृष्ण परमहंस जितने भी ये होते हैं डेवलपिंग, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी होती है। सेंस ऑफ ह्यूमर एक्चुअली इज ऑलमोस्ट इन प्रोपोर्शन टू द डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, और वो सटल होती जाती है। आप कितने भी मास्टर्स, बुद्ध से लेके श्री अरविंद तक, और इसीलिए वन रीजन कि भाई गांधी जी कहीं से महात्मा नहीं थे, सॉरी फॉर दैट, इसको कि उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर थी ही नहीं। आप देखो उनको हमेशा एक सीरियस, एक बड़े रिजिड माइंड सेट के अंदर। लुक एट द सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफ श्री रामकृष्णा, जब विद्यासागर आते हैं तो कहते हैं अरे आज सागर कैसे एक नाली के पास आ गया, नाम में है ना विद्यासागर। अब वो भी केवल पंडित नहीं है, आए हैं श्री रामकृष्ण के पास विनम्रता के साथ, कहते हैं नाला हो या कुछ भी हो, जब वो भर जाता है और सागर की तरह उफान लेने लगता है, फिर क्या अंतर रहता है सागर में या नाले में। व्हाट ए वंडरफुल थिंग। तो ये इट इज ट्रू, क्योंकि कई बार हम लोग इससे बहुत भ्रमित हो जाते हैं, कोई कितने लेक्चर दे रहा है, कितना पढ़ा लिखा है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो व्यक्ति नेसेसरली रियलाइज्ड है, इन दोनों में अंतर है। तो फिर क्या हम लोग उस दिशा में नहीं जाएं। इसका एक दूसरा भी लोगों के अंदर एक सिंड्रोम है, मेरा अपना कॉइन किया वर्ड है, आइदर और, या तो ये या वो, क्योंकि माइंड वैसे ही ऑपरेट करता है कि ये तो ट्रांजिएंट है और वो परमानेंट है, तो या तो ट्रांजिएंट या परमानेंट, लेकिन सुपर माइंड ऐसे ऑपरेट नहीं करता है। तो फिर एक कंक्लूजन लोग निकालते हैं, हाँ पढ़ने लिखने का क्या की क्या जरूरत है, कोट करते हैं कबीर को आउट ऑफ कंटेक्स्ट, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, सही बात है, बाय द वे वो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ना बहुत कठिन है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि तो फिर क्या पढ़े नहीं, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस नहीं करे, इन चीज़ों का तो कोई लाभ नहीं है। श्री अरविंद बता रहे हैं इट इज ट्रू दैट इंटेलेक्चुअल डेलिब्रेशन एंड राइट डिस्क्रिमिनेशन आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द योगा ऑफ नॉलेज, बट देयर ऑब्जेक्ट इज रादर टू रिमूव ए डिफिकल्टी दैन टू अराइव एट द फाइनल एंड पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ दिस पाथ. जरूरी है, नॉलेज ऑब्स्टिकल भी रिमूव करती है, विघ्न कर हरता. पहले तो आप ऑब्स्टिकल रिमूव करोगे ना. कई बार लोग ये पूछते हैं, अब लोगों की तो अपनी अपनी थ्योरीज हैं, गणेश जी को क्यों माना गया अग्र पूज्य, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, सबकी अपनी श्रद्धा, अपना अपना ज्ञान. लेकिन देखिए उनका रोल क्या है, विघ्न हरता. अब वो किस पावर से करते हैं, जब भी आप देखें बुद्धि से, जैसे मूसक का आप देखिए कि वो ठीक जानता है, वो पर्वत के अंदर छेद कर सकता है, उसको पता है कि कौन सा वीक स्पॉट है. अब अगर आप नॉलेज के रास्ते में आने वाली चीज़ों को एक्सक्लूड नहीं करोगे तो आप आगे जो हायर नॉलेज है वो नहीं आ सकती है. जैसे ही आएगी आपका माइंड उसको पकड़ करके डाउट में उलझ जाएगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि भाई ये भी कैसे, वो भी कैसे, ये कैसे हो सकता है. तो ये जो इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन, आप यहाँ पर साधारण तर्क की बात नहीं कर रहे हैं, डिसर्निंग माइंड, बुद्धि जिसकी बात श्री कृष्ण करते हैं, वो आपके मार्ग से बहुत सारी बाधाओं को दूर करता है. दैट इज द फंक्शन ऑफ गणेश जी एंड दैट इज हाउ ही इज अग्र पूज्य. आप इन बाधाओं को रख के आप सोच रहे हैं कि भगवान की ओर आपको अनुभव तो हो जाएगा, हो सकता है कुछ अनुभव हो जाए, ये नहीं कि अल्टीमेट अनुभव नहीं होगा, कुछ अनुभव हो सकता है, लेकिन वो अनुभव कभी भी पूरी तरह आपकी चेतना आत्मसात नहीं कर पाएगी. तो इसलिए इसका काम क्या है, देयर ऑब्जेक्ट इज रादर टू रिमूव ए डिफिकल्टी देन टू अराइव एट द फाइनल एंड पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ दिस पाथ. पूर्ण ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसका अपना. अवर ऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल नोशंस आर ए स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द वे ऑफ नॉलेज, फॉर दे आर गवर्न्ड बाय द एरर ऑफ द सेंसेस एंड दे फाउंड देमसेल्व्स ऑन द नोशन दैट मैटर एंड बॉडी आर द रियलिटी, that life and force are the reality, that passion and emotion, thought and sense are the reality. And with these things we identify ourselves, and because we identify ourselves with these things, we cannot get back to the real self. बड़े simple terms में हमारे notions हैं भगवान के बारे में, दुनिया के बारे में. कहते हैं भगवान सबके अंदर, एक वैज्ञानिक तो हंसेगा, सबके अंदर मतलब क्या, एटम होगा. ये हम नहीं समझ सकते कि तीन डायमेंशन के परे भी संसार है. जैसे ही आप फोर्थ डायमेंशन को इंक्लूड करोगे ये बात प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. लेकिन ऑर्डिनरीली हाँ हो सकता है सबके अंदर, तो फिर वो एटम होगा या कोई सब एटमिक पार्टिकल होगा. ये हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी सीमा है इंद्रियों की. अब जो ये न्यू नॉलेज जो अब गणेश जी, अब समय अब गणपति जी का चल रहा है समय दिन, तो वो क्या करेंगे, आपके अंदर से ये ऑब्स्टेकल निकाल देंगे. तो जब ये ऑब्स्टिकल चला गया तो आप ये ऑटोमेटिकली कि देर आर मेनी डायमेंशंस एंड डिवाइन इज बियॉन्ड ऑल डायमेंशंस एंड येट इन ऑल टाइम, क्योंकि डायमेंशंस आर ए क्वेश्चन ऑफ परसेप्शन. खत्म हो गई बात कि ये तो हमारी परसेप्शन की सीमा है, हमारी कैलकुलेशन की सीमा है, लेकिन रियलिटी तो ऑब्वियसली उसके परे है. वो एक्सप्रेस कर रही है जो अब कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर, अब ये कोई जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति टिपिकली पूजा कर रहा हो गणेश जी की. ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके अंदर ये भाव आ गया, क्यों, कृपा है उनके अंदर, ये ऑब्स्टिकल चला गया, वो लिमिटेशन, वही जैसे आइदर और एक लिमिटेशन हो गई कि भगवान या तो यहां है या तो वहां है. लेकिन वो देखिए आप कि भगवान तो यहां भी है, वहां भी है, इसके परे भी है और इस सब में भी है. और बहुत सारी कहानियां है बाई दिवे गणेश जी की, जहां उनकी तीव्र कुशाग्र बुद्धि से उन्होंने चीजों का हल निकाला. ये गणेश जी की कहानियों में आती है. शिव जी नहीं करते हैं ये सब. शिव जी तो सीधा देख लिया, यस और नो. कृष्ण जी नहीं, कृष्ण जी कैसे करेंगे, लीला घुमा के असुरों को किधर ले जाएंगे, वहीं अपनी मृत्यु के द्वार तक ले जाएंगे. ये नारायण का तरीका है. विष्णु भगवान ये सब एनालिसिस करके नहीं, पर ले जाएंगे उसको उधर ही. लेकिन गणेश जी आप देखिए जितनी स्टोरीज उसमें वो अपनी कुशाग्र बुद्धि के रूप से वो इस प्रकार से चीजों को रखते हैं कि वो करेक्ट पॉइंट पर, जहां लोग उलझ गए हैं, देवता भी उलझ गए हैं कि भाई हम करें क्या, करें तो करें क्या इस अवस्था में, तो वहां पे वो उसका सॉल्यूशन लाते हैं. तो ये जो कैपेसिटी है वो बहुत जरूरी है इस योग में, क्योंकि नहीं तो हमारे ही अपने नोशंस वो मार्ग में आते हैं। और ये कितना जरूरी है, देखिए अभी किसी ने प्रश्न किया कि सनातन धर्म वर्सेस सेमिटिक रिलीजन, ये वो, नहीं का खुद ही सोचो, कॉमन सेंस यूज करो, इंट्यूटिव सेंस यूज करो, कि जस्ट एक चीज को ले लो कि भगवान, इंट्यूशन हमारी क्या कहती है, भगवान सब जगह होगा या केवल अपने हेवन में बैठा होगा, बाकी छोड़ दो, तो आपकी इंट्यूटिव सेंस और कॉमन सेंस दोनों, इवन लॉजिकल सेंस, किस भगवान को जाना चाहेगी खोज में, वो जो सेवेंथ हेवन में बैठा है जिसका केवल एक संतान हुई है, या वो जो सर्वव्यापी है और हम सब उसकी संतान है। एक इंट्यूशन आपको कहेगी कि यस, क्वाइट नेचुरली। लेकिन ऐसे लोग हैं अनेकों अनेक संसार में, लगभग आधी आबादी जो ये मानती कि नहीं, केवल एक व्यक्ति में भगवान आया था, वो पहला था या आखिरी था, वो एक डिबेटेबल चीज है, क्रिश्चियनिटी में वो वन एंड ओनली है, इस्लाम में वो आखिरी है, बाकी किसी के अंदर नहीं है। अब देखिए ये ऑब्स्टिकल है ना बहुत बड़ा, इसलिए इनके अंदर ज्ञान नहीं आता है। और गणेश जी तो हमारे ज्ञान हटा देते हैं ये ऑब्स्टिकल, तो हम खुद ही उसको कहते हैं कि भाई ये इसमें तो भगवान हो ही नहीं सकता, ये आप एक्सक्लूसिव, हम ये नहीं कहते कि वो पथ नहीं, हम कहते ये एक लिमिटेड पथ है, क्योंकि इसके अंदर एक एक्सक्लूसिवनेस है। तो ये देखिए, क्योंकि गणेश जी हमारे अग्र पूज्य हैं, जब आप गणेश जी की पूजा नहीं करोगे तो यही होगा कि आप आधे अधूरी चीज से संतुष्ट हो जाओगे। खैर, देयरफॉर राइट थॉट इज ए नेसेसरी प्रीलिमिनरी, एंड वंस द हैबिट ऑफ राइट थॉट इज एस्टेब्लिश्ड, फ्री फ्रॉम सेंस एरर एंड डिजायर एंड ओल्ड एसोसिएशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रीजजमेंट, द अंडरस्टैंडिंग बिकम्स प्योरिफाइड एंड ऑफर्स नो सीरियस ऑब्स्टिकल टू द फर्दर प्रोसेस ऑफ नॉलेज। और ये बहुत आवश्यक है भारतवर्ष में इस समय, बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये भी नहीं ब्लाइंडली जो भी आ गया व्हाट्सएप पे आ गया, इधर आ गया, राइट थॉट, बुद्ध भी इसी की बात करते हैं, देखिए कितना अच्छा समन्वय है, राइट थॉट, राइट परसेप्शन, राइट थॉट, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट एक्शन, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। आप पहले तीन हटा दीजिए, फिर बोलिए राइट एक्शन, बेसिस क्या होगा? आप ये कहें कि नहीं इस सृष्टि का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई भगवान नहीं है, फिर कहें यू शुड बी ए गुड ह्यूमन बींग, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ इट? इफ यू आर एन एनिमल, यही अगर सत्य है तो आपका व्यवहार वही होगा। तो राइट परसेप्शन, चीजें जैसी हैं वैसे देखना, ये बहुत बड़ी बात है, एक प्रकार की सिंसेरिटी है। हम लोग अपने आप को बढ़ा चढ़ा के देखते हैं, दूसरों को मिनिमाइज करके, ये सब इसका हिस्सा है। राइट थॉट, सही मूल्यांकन, थॉट, थॉट कहां से आया, थॉट की सीमा क्या है, ये प्रश्न थे जो हमारे योगियों ने, ऋषियों ने इस पर मनन किया था। राइट थॉट, स्टिल राइट थॉट ओनली बिकम्स इफेक्टिव व्हेन इन द प्योरिफाइड अंडरस्टैंडिंग इट इज फॉलोड बाय अदर ऑपरेशंस, बाय विजन, बाय एक्सपीरियंस, बाय रियलाइजेशन। अब यहां पर श्री अरविंद बताते हैं व्हाट आर दीज ऑपरेशंस, यानी ये कौन सा उपाय है, तरीका है जिससे हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने डिस्कार्ड नहीं किया बुद्धि को, एनालिसिस को, राइट थिंकिंग को डिस्कार्ड नहीं किया है, उसकी जगह है, वो ऑब्स्टिकल को रिमूव करता है जो आवश्यक है, लेकिन वो ज्ञान अपने आप में आपको नहीं देगा। आपका मन शांत हो सकता है, आप बहुत ही एक अवस्था में प्रवेश कर सकते हो जहाँ समत्व का भाव है, चीज़ों को आप सही ढंग से देख सकते हो, उससे आपकी सफरिंग तक जा सकती है। बुद्ध का तो ये बड़ा सुंदर, यही बातें बता के उन्होंने लोगों को एक सुंदर रास्ता दिखाया कि वो आत्मज्ञान तो छोड़ो, डोंट टॉक अबाउट इट, बट अगर आप राइट सही ढंग से चीज़ों को देखोगे तो आपकी आधी समस्या दूर हो जाएगी। एक सिंपल सी चीज़ है, ये मेरा है, ये तो हैबिट है ना, क्या है मेरा? अगर आप इस तरह से देखें तो आप देखेंगे कि बहुत सी पीड़ा और दंश जो केवल इससे होता है कि ये मेरा है, यहां ये लाने की जरूरत नहीं है कि ये भगवान का है या किसका है। सच अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है हमारा, प्रकृति के अंदर है, चीजें जा रही हैं, आज आपके पास है कल नहीं रहेंगी, ये तो फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन है लाइफ का, इसके लिए हमको कुछ भी डीपर जाने की, लेकिन ये थॉट आपको बताएगा। लेकिन जब आपके पास है, आप कैसे उपयोग करते हो ये आपके हाथ में है, आपके बाद वो कहां जाएगी यू डोंट नो, आपके पहले वो कहां थी आपको नहीं पता, अभी आपके पास आई है, अब आप उसको कैसे उपयोग करते हो ये आपके हाथ में, ये राइट थॉट हो गया। इसके लिए आपको कोई, तो इससे आपको देखिए कितनी सुंदर अवस्था में व्यक्ति प्रवेश करता है, क्योंकि हर समय इससे पीड़ित होता है, मेरे पास ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। प्रश्न करते हैं लोग कि जो स्वार्थी होते हैं, हम देखते हैं कि उनको बड़ी सक्सेस मिलती है, तो मैंने पूछा कि भाई सक्सेस को डिफाइन कैसे करते हो? जो स्वार्थी है तो बहुत अकेला हो जाता है, फिर अकेलेपन से भागने के लिए वो पार्टीज में जाता है, पैसे थ्रो करता है, उसके मित्र आते हैं, क्यों पैसे के पीछे आते हैं, उस व्यक्ति के पीछे थोड़ी आ रहे हैं, वो उस आपको प्यार थोड़ी करते हैं। बच्चे भी ये वो इंतजार कर रहे हैं कि कब पापा विल लिख करके वानप्रस्थ ले लेंगे। तो अब राइट थॉट अगर होगा, आप इसको सब चीजों को देख लोगे, आपको कोई स्क्रिप्चर की जरूरत नहीं। तो राइट थॉट कैन गो टू एनी एक्सटेंट, इवन डिवाइन। सिंपल लॉजिक है, अगर डिवाइन मन से समझ में आ जाता तो मन से कम है, नीचे है। इवन एज ए यंगस्टर यू कैन थिंक अबाउट इट। लोग पूछते थे क्लास में, फॉर एग्जाम्पल एक बार हमारे क्लास में बात हो रही थी कि भाई भगवान है तो टेस्ट ट्यूब में क्यों नहीं हम बना सकते। टेस्ट ट्यूब में जो बन जाएगा वो भगवान है ही नहीं। मतलब आप उल्टा कर रहे हो ना लॉजिक को, यू आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। जो चीज टेस्ट ट्यूब में ह्यूमन माइंड प्रकट कर सकता है, तो फिर तो माइंड हो गया ना गॉड, तो गॉड तो वो नहीं हुआ ना, वो तो एक केमिकल हुआ। आप उसको गॉड बोलो, गॉड पार्टिकल बोलो, जो भी बोल दो। जो पीनियल ग्लैंड में, अभी भी देखिए लोग करते हैं इस तरह की बात, पीनियल ग्लैंड में भगवान है, जो पीनियल ग्लैंड में डिपेंड करता है वो तो भगवान, आप उसको बोल रहे हो भगवान, लेकिन आपने तो क्या कर दिया, माइंड को फिर सुपीरियर कर दिया। लेकिन वो माइंड के परे है, माइंड के परे भी कुछ हो सकता है। इतनी सिंपल सी चीज आपको राइट थॉट बता सकता है कि माइंड की भी लिमिट हो सकती है, देयर मे बी समथिंग ग्रेटर देन थॉट, बियॉन्ड माय सेंसेस। सो ये सब बहुत बड़ी ये चीज है राइट थॉट होना। लेकिन हमको आगे जाना है, वो आगे क्या है, अब वो शेरविन बताते हैं कि टर्निंग द आई इनवर्ड। अब राइट थॉट क्या करता है, ऑब्स्टेकल रिमूव कर दिए, इन चीजों में मन को मत उलझाओ, ये हैं, इनकी अपनी वैल्यू है, वो नहीं है जो तुम दे रहे हो, लेकिन इनकी अपनी वैल्यू है, वो वैल्यू तुम्हें बाद में पता चलेगी। अब तुम उसको ढूंढो, वो कहां है, अंदर है। टर्निंग द आई इनवर्ड, ये जो गीता में इसकी बात की, बुद्धि को अंदर व्यवसायत्मक एक पॉइंट उस पर फोकस करो। To this turning of the eye inward, psychological self-observation and analysis is a great and effective introduction. Introduction है कि हम जब ये देख लेते हैं कि ये नहीं तो permanent कहाँ है, इसके पीछे आधार क्या है इसका, यही केवल अगर हम ढूंढे कि इस सृष्टि का आधार क्या है, कुछ तो होना चाहिए ना, प्रकृति यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, किस में एक्सपैंड कर रहा है, तो आप बोलोगे स्पेस। तो क्वेश्चन है कि स्पेस यूनिवर्स के एक्सपैंड करने से आ रहा है या स्पेस है जिसमें यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, और अगर कर रहा है तो वो स्पेस किस चीज का बना है, कहीं पर भी। तो ये राइट थॉट इज ए वेरी पावरफुल टूल फॉर लुकिंग इनवर्ड, लुकिंग डीपर इनटू द हार्ट ऑफ थिंग्स। फिर वो वर्ड यूज करते हैं, द स्टेटस ऑफ नॉलेज देन विच योगा एनविसाजेस इज नॉट मियरली एन इंटेलेक्चुअल कंसेप्शन और क्लियर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ट्रूथ, नॉर इज इट एन एनलाइटेंड साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस ऑफ द मोड्स ऑफ अ बीइंग, इट इज अ रियलाइजेशन इन द फुल सेंस ऑफ द वर्ड। रियलाइजेशन का अर्थ क्या है, इट इज द मेकिंग रियल टू अवर सेल्व्स एंड इन अवर सेल्व्स ऑफ द सेल्फ विद ए कैपिटल एस। रियल हो गया, अभी रियल नहीं है, माइंड उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है, हाँ होना चाहिए नेचुरली, हाँ निश्चित रूप से परमानेंट, ये सब देखिए माइंड रिफ्लेक्ट कर रहा है, हो सकता है उसका एक आभास भी हो जाए। लोग कई बार कहते हैं जैसे लेक जब शांत होती है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, तो चंद्रमा का भासित करती है, हाँ लेकिन वो चंद्रमा थोड़ी है, आप उससे थोड़ा सा एक चंद्रमा की आभा, बट मून इज द मून। तो जब रियल हो जाए आपके लिए भगवान, तो वो सेल्फ है, इस हद तक रियल हो जाए कि आप स्वयं पर डाउट कर सकते हो, लेकिन ये डाउट नहीं कर सकते कि डिवाइन एग्जिस्ट, तो इतना रियल। दिस रियलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 3 सक्सेसिव मूवमेंट्स, इंटरनल विजन, कंप्लीट इंटरनल एक्सपीरियंस एंड आइडेंटिटी। इंटरनल विजन दृष्टि, किसी न किसी रूप में आपको ग्लिम्स करना है। अब ये दृष्टि ये नहीं कि आंख से आपने देख लिया, वो भी है, लेकिन आपने किसी ना किसी रूप में, जैसे फॉर इंस्टेंस दृष्टि, आपने माता जी को देखा, अभी इट कैन अप्लाई टू एनीवन, हम माँ श्री अरविंद को देखा और आपको ये अंदर में आभास हुआ या एक ज्ञान का उदय हुआ या जो भी आप कहें कि भगवान है, या आपने कैसे मालूम है, दिस इज वन काइंड ऑफ दृष्टि जो आवरण को चीर के उसके पीछे के सत्य को प्रकट कर रही है। इसीलिए इसको कहा गया दर्शन। दर्शन इज नॉट जस्ट स्टैंडिंग इन ए क्यू, दर्शन इज जब आपने दृष्टि डाली तो आपको वहां पे भगवान की उपस्थिति किसी ना किसी लेवल पर, किसी ना किसी रूप में दिख गई। उसके बाद आपको डाउट नहीं होगा, इट बिकम्स रियल। उसके बाद आप जब भी मिल रहे हैं श्री अरविंद माता जी से, जिस भी रूप में, आपको ये डाउट नहीं है कि वो भगवान है, ये दृष्टि है। इसके कई उदाहरण हैं, इसमें डायरेक्ट प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों होती हैं। फिर वो कहते हैं कि लेकिन जैसे किसी चीज को हम देख लेते हैं, उतना काफी नहीं होता है। आपने देखा लेकिन आप उसको अपने सुनना, बाकी इंद्रियां टेस्ट करना, स्मेल करना, वो होता है ना, आप हर तरह से मन के अंदर आप हर सेंसेस से उसकी टोटैलिटी को पकड़ना चाहते हैं। आपको पता है कि यहाँ राजा रहता है, आपने एक दो बार देखा राजा को घूमते हुए, आपने मन में धारणाएं बना ली, राजा है तो जज होगा, राजा है तो डरना चाहिए, आप गए। अब जब राजा से मिले तो आप तो बड़े, अरे ये तो खुद ही चाय बना के हमारे लिए ला रहा है, हो चुका है ना, होता है कभी कभी। अब पहली बार हम किसी घर में गए जो दिल्ली में रहते थे, सबसे पॉश इलाके में, तो उन्होंने बुलाया था, तो हम तो यंगस्टर थे, मैं था, वाइफ थी और एक और व्यक्ति था साथ में, हम तो बस में जा रहे हैं, हमें किसी ने कहा वो तो सबसे पॉश इलाका है। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम कभी गए नहीं थे इस तरह के घर भर में, तो गए तो घर देखा, इतना बड़ा ड्राइव वे, तो हम तो पहले समझ ही नहीं आया, खैर किया, घर गए अंदर में तो जो भी था व्यक्ति उसने कहा किससे मिलना, हमने कहा फला, उन्होंने बोला अच्छा रुके, तो वो खुद आ गए। अब खुद आ गए, अपना बैठ गए, बातें करने लगे, बड़ी इतने घुल मिल के बातें की। फिर उन्होंने फ़ोन उठा करके किचन में कहा जो भी चाहिए था, हमने कहा अच्छा यहाँ से किचन तक के लिए भी फ़ोन चाहिए, पर वो बातें इतने सरल सरल, इतनी अच्छी मित्रता हुई जो अब तक है माँ के डिवोटी। तो ये भाव समाप्त हो गया ना, नहीं तो पहले एक कंसेप्शन होता है कि भाई इस तरह के लोग होंगे, तो केवल देखना काफ़ी नहीं होता है, आप धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रुख से सरकती जाए है नकाब, आहिस्ता आहिस्ता भगवान पहले वेल्स में दिखते हैं फिर वो धीरे धीरे कम होता है, और हम वो दूसरी भी है ना, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल फसाना हो गए, पहले वो फूल दूर से देखा फिर गुल बदन आपके शरीर के अंदर गंध आने लगी, फिर वो सब कुछ फूल जैसा हो गया, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो ये एक स्टेप्स है, पहले हम देखते हैं दृष्टि, उसके बाद फिर क्या होता है, ज्योतिर्मय ब्रह्म का दर्शन, व्हेन ए फ्लड ऑफ लाइट ब्रेक्स ओवर द अवेकेंड मेंटालिटी ज्योतिर्मय ब्रह्मन एंड कंसेप्शन गिव्स प्लेस टू अ नॉलेज विजन इन विच द सेल्फ इज एज प्रेजेंट रियल कंक्रीट एज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट टू द फिजिकल आई दैट वी पजेस इन नॉलेज फॉर वी हैव सीन। तभी श्री रामकृष्ण से जब स्वामी विवेकानंद ने पूछा आपने भगवान को देखा है, बोले हाँ दिखा सकते हैं, बोले हाँ ये देख, सिंपल आंसर। एक बार छुटनारायण जी ने, एक पास में एक व्यक्ति था उसको सब बोलते थे पागल पागल, भोलू भोलू, भोलवा भोलवा, पागल पागल। तो एक दिन उनके मन में आया मैं पूछूं इससे, हायर सेकेंडरी में थे, जाके पूछते हैं देखो तुम सच में पागल हो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन कोई ऐसे ही घूमता रहता था पागल जैसा। तो रुक गए, मुड़ के देखा, फिर बोलिए नहीं हम पागल नहीं हैं। तो उन्होंने कहा फिर तुम क्या करते हो, क्या देखते हो? वो हंसने लगा। फिर इन्होंने पूछा भगवान है क्या, तुम देख सकते हो भगवान को? तब हंस के कहता और देखने को है क्या संसार में? अब तो इनका माथा बिल्कुल, ये पागल पागल लोग कहते हैं, कहते हैं और देखने का है क्या संसार में। तो फिर उन्होंने पूछा हमको दिखा सकते हो, बोले नहीं तुम्हारे गुरु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ही कुड सी। बोले आपको कैसे मालूम, बोले वो आके मुझे बता रहे हैं। जस्ट इमेजिन, और लोग पागल पागल। तो देखा दृष्टि, उसके बाद वो वही रियल है, उसमें फिर डाउट नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये तो जीव मेरा है। तो ये होती है दृष्टि के बाद। सो द विजन ऑफ द सेल्फ ऑट टू बी कंप्लीटेड बाय एन एक्सपीरियंस ऑफ इट इन ऑल अवर मेंबर्स, अवर होल बीइंग ऑट टू डिमांड गॉड एंड नॉट ओनली अवर इल्यूमिन्ड आई ऑफ नॉलेज। अब जो होल बीइंग की बात आती है तो क्या आती है, वी कैन हैव एन इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्फ थ्रू लव। अब देखिए जो टिपिकल ज्ञान योगी इसकी बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो अलग पथ है। आप भावनात्मक दृष्टि, इसको भाव समाधि कहिया भी गया है क्योंकि आप भाव में इतना अधिक उनके साथ एक हो जाते हो, यू बिकम दैट लव। वी कैन हैव एन इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्फ थ्रू लव एंड थ्रू इमोशनल डिलाइट। प्रेम का भी कोई सेल्फ रियलाइजेशन से लेना देना है, कहते हैं यस इमोशनल एक्सपीरियंस। वी कैन हैव एन एस्थेटिक एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्फ इन ब्यूटी, ए डिलाइट परसेप्शन एंड टेस्ट ऑफ द एब्सोल्यूट रियलिटी, ऑल डिलाइटफुल इन एवरीथिंग वेदर क्रिएटेड बाय आवरसेल्व्स और नेचर इन इट्स अपील टू द एस्थेटिक माइंड एंड द सेंसेस, दस द सेंस इज सेटिस्फाइड ऑफ गॉड। जब आप देखते हो किसी दृश्य को और अचानक उसके पार चले जाते हो, भगवान का जैसे दर्शन हो गया, एस्थेटिक सेंस है आपकी, आपको उसे परम सौंदर्य परम आश्चर्य का दर्शन होता है। वी कैन हैव इवन द वाइटल नर्वस एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकली द फिजिकल सेंस ऑफ द सेल्फ इन ऑल लाइफ एंड फॉर्मेशन एंड इन ऑल वर्किंग्स ऑफ पावर्स फोर्सेस एनर्जीज दैट ऑपरेट थ्रू अस और अदर्स और इन द वर्ल्ड, दस द लाइफ एंड द बॉडी आर सेटिस्फाइड ऑफ गॉड। हर लेवल पर हम भगवान के साथ दर्शन भी कर सकते हैं और उनको रियलाइज भी कर सकते हैं, केवल माइंड ऑफ नॉलेज नहीं, ज्ञान से ही नहीं, हृदय से भी, जीवन से, कर्म से, और यहाँ तक कि शरीर से, इंद्रियों से, हर लेवल पे। अब ये है इंटीग्रल सेल्फ या इंटीग्रल नॉलेज। और अंत में All this knowledge and experience are primary means of arriving at and of possessing identity. It is ourself that we see and experience, and therefore vision and experience are incomplete unless they culminate in identity, unless we are able to live in all our being the supreme Vedantic knowledge, He am I, Sa Purusha Evascha. इतना काफी, सो हम अस्मी ने ही एम आई, वह जो पुरुष वहां पर है इन द सन और वह जो यहां है दे आर सेम। वी मस्ट नॉट ओनली सी गॉड एंड एम्ब्रेस हिम बट बिकम दैट रियलिटी। तो ये है श्री अरविंद का इंटीग्रल नॉलेज का कल्बिनेशन। और हम देखते हैं कि इसमें सब श्री अरविंद किसी भी द्वार से ले जाते हैं, वो हमको समग्रता की ओर ले जाते हैं, यानी कि ज्ञान का मार्ग। तो इसीलिए उन्होंने इस तरह ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग ऐसे सेपरेट नहीं करके, इसलिए इसमें बता रहे हैं उनका ट्रुथ लेकिन ले जा रहे हैं उसी तरफ लास्ट में। और यही चीज़ हम गीता में देखते हैं। ये मॉडर्न माइंड है जिसने ये सब भेद बनाने शुरू किए हैं और अलग अलग पथ फिर उसको कैटेगोराइज, ये माइंड की एक माइंड की का तौर तरीका है, किंतु इन रियलिटी भगवान को तभी हम जान सकते हैं जब उनको सारी समग्रता में जानते हैं। और कैसे जानते हैं, उनके साथ एक होके जानते हैं, और वो उनके साथ एकत्व संसार को, प्रकृति को, जीवन को एक्सक्लूड नहीं करता है क्योंकि ये भी तो वही बने हैं। तब हम जान पाते हैं कि ये क्यों है, कैसे है और इसका अल्टीमेट भविष्य क्या है। जय मां।